महाबंद पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 17। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहं। भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महागवनविख्यातम् महाबन्धं नमाम्यहम्।
आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें अभी हम द्वितीय स्थितिबंध अधिकार को देख रहे हैं और दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 65 पर आ गए, 65। ये अभी हमारी अंतर की प्ररूपना चल रही है कि हाँ, आपका प्रश्न क्या है? किसमें किसमें कौन से मार्गणा में? पंचेंद्रिय मार्गणा में। हाँ, उत्कृष्ट अंतर। हाँ हाँ हाँ, एक समय कम पूर्व कोटि प्लस 10,000 वर्ष। देखो देखो, पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट आयु कितनी बनती है? 33 अगर की। यानी कोई जीव पंचेंद्रिय में आया, मार्गणा शुरू हुई, उस भव में उसने 2/3 पूर्व कोटि बिताया, 1/3 बाकी है, तो उसने 33 अगर की नरकायु बांधी। हम ले लेते तो नरकायु बांधी, एक बार तो हो गया उसने, अब वो पंचेंद्रिय में रहा लगातार। पंचेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? तो 1,000 सागर और वर्ष पूर्व कोटि पृथक। तो उसके अंतिम एक्चुअली नरक का एक भव छोड़ो और उसके पहले और एक भव छोड़ो, पंचेंद्रिय का लास्ट से तीसरा पंचेंद्रिय का भव, वो फिर पूर्व कोटि वाला मनुष्य तीरेंच हुआ, उसने 33 अगर की नरकायु बांधी। फिर हमें लंबा काल बाद में नहीं रखना था इसमें, फिर उसको 10,000 वर्ष का बना दिया मान लेते, उसने फिर पंचेंद्रिय की आयु बांधी और यहाँ पंचेंद्रिय मार्गणा उसकी समाप्त हुई। यानी कितनी है उसकी पंचेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल? 1,000 सागर और पूर्व कोटि पृथक। तो कुछ कम करना, अपने अपने स्थिति समझ में आनी है हमको, पर उसमें कुछ कम दोनों ओर करना। यहाँ तो 2/3 पूर्व कोटि भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसकी उत्कृष्ट आबाधा ये उसकी कंडीशन है। यानी पहला भाव पूर्व कोटि का और उसमें 2/3 पूर्व कोटि बीतने पर उत्कृष्ट बंध किया, बाद में वो भटका पंचेंद्रियों में और फिर लास्ट में अंत से तीसरा पंचेंद्रिय का भाव पूर्व कोटि का मनुष्य तीरेंज, उसने नरकायु बांधी, फिर घातायुष को किया 10,000 वर्ष का। क्यों? क्योंकि हम बाद में आयु बांधने के बाद उसको कम रखना है पंचेंद्रिय, इसलिए यहाँ का अंत बड़ा करना है। हाँ, सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर एकेंद्रिय में नहीं होता, बादरों में होता है, बादर एकेंद्रियों में होता है या बादर कायिकों में होता है। उनके बंध की बात नहीं है, उस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल उसको काय स्थिति कहते हैं। वो बंध तो सागर का कर रहे हैं, उस पर्याय में बादर एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय कितने काल तक रहेगा? तो कहते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर काल तक वो बादर एकेंद्रिय में रहेगा। एक कर्मस्थिति एक नाप है, यूनिट है, वो कर्मस्थिति बांधता है इसका उसका अर्थ नहीं है। ख्याल में आई बात, जैसे हम कहेंगे कि एक इंद्रिय में रहने का काल कितना है तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, तो थोड़ी वो इतना कर्म बांध रहा है, उसकी बात नहीं है। उसमें रहने का उत्कृष्ट काल उसको काय स्थिति कहते हैं। और कोई प्रश्न है? हाँ, अभी हम अपनी अंतर की बात चल रही थी। पांच मनोयोगी और पांच मनोयोगी वचन योगियों में हमने देखा था कि उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर काल नहीं है, क्योंकि देखो उत्कृष्ट स्थितिबंध कौन करेगा इनमें, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि सर्व संकलेश वाला। परंतु योग का काल इतना छोटा है कि एक ही योग के रहते हुए भले वो लगातार उत्कृष्ट बंध अंतर्मूर्त कर सकता है, परंतु अंतर के लिए एक बार उत्कृष्ट होकर मान ले तो एक समय के लिए भी उत्कृष्ट होकर रुकेगा, फिर भी अंतर्मूर्त अनुत्कृष्ट होकर फिर वो उत्कृष्ट कर सकता है। योग का काल इतना बड़ा नहीं है, इसलिए उत्कृष्ट का अंतर नहीं है, ये बात घटित होती है। अब अनुत्कृष्ट का कैसे करना, कि उत्कृष्ट एक समय के लिए किया तो अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर एक समय हुआ, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, जैसे पहले समय में उसका अनुत्कृष्ट था फिर उसने उत्कृष्ट किया और वो योग पलटने के पहले पहले वो अंतिम समय में फिर अनुत्कृष्ट हुआ, तो अनुत्कृष्ट का अंतर यानी वो योग का जितना काल है उसमें दो समय कम करो दोनों ओर, उतना अंतर्मूर्त वाला ले सकते हैं। ये पेज नंबर 65 शुरू करने के पहले हम 64 की बात पढ़ रहे थे, फिर उसका विशेषार्थ पढ़ेंगे। अब योग मनोयोग कहो वचन योग कहो या पंचेंद्रियों में काय योग भी कहो, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटता है, तो आयु एक बार बंधी और फिर दोबारा बंधी ऐसा तो नहीं हो सकता, इसे वहां कहेंगे उत्कृष्ट का भी अंतर नहीं होगा और अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं होगा। अब ऐसी बातें उन्होंने अन्य अन्य मार्गणाओं में कौन कौन से योग वाले में होते वो बात बताई थी, पढ़ लेते पूरा ही अभी। चौथी लाइन, इसी प्रकार वैक्रिक कायोगी, क्योंकि वैक्रिक कायोगी भी वो भी अंतर्मूर्त तक ही होगा, वो भी मनोयोग वचन योग वैक्रिक कायोग पलटते रहेगा। आहार कायोगी यह लिखना उसमें, और क्रोधादि चार कषाय में जानना चाहिए, क्योंकि वो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटने वाली बात है, अंतर्मूर्त की मार्गणा है। अब कायोगी संगी में भी तो कायोग भी पलटेगा अंतर्मूर्त में, और औदारिक कायोगी जीवों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार यानी सात कर्मों का उत्कृष्ट के लिए उत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा। कायोग लगातार भले असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक रहेगा, परंतु उसमें उत्कृष्ट कौन करेगा तो संगी पंचेंद्रिय, और संगी पंचेंद्रियों का औदारिक काय योग कहो या काय योग कहो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगा, उसमें भी उत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा, ये बात घटित होगी। परंतु इतनी विशेषता है कि आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं है, अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। ऊपर हमने देखा योग में आयु के अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं था, अब औदारिक का योग कहो या का योग कहो, अनुत्कृष्ट का बंध का अर्थ होता है अनुत्कृष्ट आयु बांधे, कोई भी आयु बांधी यानी एक बार आयु बांधी फिर दोबारा बांधनी चाहिए। कंडीशन क्या है, का योग कायम रहो या औदारिक का योग कायम रहो, ये तो हो सकता है, क्योंकि अनुत्कृष्ट का अंतर कैसे होगा, मिनिमम तो अंतर्मूर्त होता है दो अपकर्ष के बीच में यानी सातवें आठवें अपकर्ष के बीच में कहेंगे, और उत्कृष्ट अंतर कैसे होगा, एक ही भव लेना है उसमें, एक भव ने उसने बंथड़ बाकी है भव तब आयु बांधी, फिर दूसरा भव किया बड़ा भला और फिर टू थर्ड बीतने पर आयु बांधी, तो काय योग में एक भव की उत्कृष्ट आयु कितनी, तो 22,000 वर्ष की, तो दो भव के मिलकर 22,000 वर्ष और एक समय वो माइनस करना उत्कृष्ट बंध का। हाँ, वो घातायुष्क किया उसने, फिर बीच में घात उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट के लिए घाता इश्क नहीं लेना है, अनुत्कृष्ट के लिए कहाँ ले सकते हैं, उत्कृष्ट के लिए लेना है, और उत्कृष्ट उत्कृष्ट कौन बांधेगा, कायोग में उत्कृष्ट आयु कौन बांधेगा, वो 33 सागर वाला बांधेगा, 33 सागर का बंद करने वाला, वो पंचेंद्रिय है, उसमें योग पलटता है, उसमें उत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा। अनुत्कृष्ट का अंतर कहाँ होगा? एक इंद्रियों में होगा, जहाँ का योग लगातार है या उदारिक का योग लगातार है, अनुत्कृष्ट का अंतर होगा। वो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? यानी दो, हर भव में आयु तो बांधेगा ही बांधेगा। पहले भव में वन थर्ड भव बाकी था तब आयु बांधी, दूसरे भव में उसने कब बांधी? अंत में जाके बांधी, अंत में जाके बांधी, यानी वो पूरा भव अंतर्मूर्त कम, और ये वन थर्ड अंतर्मूर्त कम, यानी यहाँ 22,000 का वन थर्ड यानी साधिक 7,000, तब उसने आयु बांध कर रुका, अनुत्कृष्ट किया, फिर वहां 22,000 में उत्पन्न हुआ और उसके अंत में जाके उसने आयु बांधी असंक्षेपाध्या काल में, तो साधिक 22,000 कहेंगे हम, वही कहा यहाँ पर। वो पूर्व भव में पहले बांधी थी, दूसरे भव में असंक्षेपाध्या में बांधी। आप कह रहे पहले 8 उपकर्ष में बांधी तो असंक्षेपाध्या फिर नहीं बांधती, वो बराबर है, पर हमने पूर्व भव में वन थर्ड बाकी था तब बांधी, और दूसरे भव में पूरी आयु बिताने पर असंक्षेपाध्या में बांधी, आयु बांधी बस इतना ही है, तो साधिक एक भव हो जाएगा। और यहाँ बड़ा भव कितना है? 22,000 का, इसे साधिक 22,000 वर्ष लिया। अब औदारिक मिश्र का योगी, वैकृत मिश्र का योगी, आहारक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी और अनाहारक जीवों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतर नहीं है। क्योंकि कार्मण का योगी में उत्कृष्ट कौन करेगा? संगी पंचेंद्रिय मरकर संदिग्ध पंचेंद्रिय में जा रहा है, क्योंकि असंगी से आए हुए को कार्मण का योग में तो उसके उसके योग्य बंध होता है, उसकी बात नहीं है। तो जो उत्कृष्ट करेगा उसके तो दो ही समय होते हैं, फिर से उत्कृष्ट करने वाले के दो समय हैं। तो पहले समय में मान लेते उत्कृष्ट किया, दूसरे समय में अनुत्कृष्ट किया, फिर उत्कृष्ट करने के लिए तीसरा समय कहाँ है उसके लिए, इसलिए अंतर नहीं होगा। मान लेते पहले समय में अनुत्कृष्ट किया, फिर उत्कृष्ट किया, फिर अनुत्कृष्ट का अंतर कैसे होगा? यानी जहां संगी पंचेंद्रिय है और ये कार्मण का योग है, वहां दोनों का भी अंतर नहीं घटित होता। यानी कार्मण का योग की बात होगी। अब औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र और आहारक मिश्र में उत्कृष्ट कब होता है? पर्याप्ति, अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पूर्व में उसका उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट के बाद फिर अनुत्कृष्ट होने का सवाल नहीं, उसका मिश्र का योग चला गया। अनुत्कृष्ट शुरुआत से था, अनुत्कृष्ट का अंतर कब हुआ? जब उत्कृष्ट हुआ, पर अंतर समाप्त नहीं हुआ, इसलिए ना उत्कृष्ट का अंतर है ना अनुत्कृष्ट का अंतर है, ये उसका रीजनिंग है। कार्मण का योग में रीजनिंग अलग है, उसमें दो ही समय है तो उसमें अंतर का सवाल नहीं होता, और बाकी में अंतिम समय में जाके उसका उत्कृष्ट है, तो पहले अनुत्कृष्ट था तो इसलिए उत्कृष्ट का भी अंतर नहीं, अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं। यहां तक समझ में आई बात? अब औदारिक मिश्र का आयोग में आयु तो बनती है, उसका अंतर कैसा लेना है? उत्कृष्ट आयु बंध किया, उत्कृष्ट आयु बंध कितना करेगा हमने देखा था, हाँ एक पूर्व कोटि, करोड़ पूर्व को, पूर्व कोटि को एक ही बात है, तो फिर उसका औदारिक मिश्र में रखना है और फिर आयु भी बांधना है, तो उसने कहा था युष्क कर, वो तो लब्धि पर्याप्त की आयु रखी, फिर लब्धि पर्याप्त में उत्पन्न हुआ, फिर उसने उत्कृष्ट बंध किया, तो कितना होगा? यहाँ वन थर्ड और वहां टू थर्ड, और पहला समय माइनस करना, यानी लब्धि पर्याप्त की जघन्य आयु में उसमें से उसमें एक समय कम करना, ये उसका हुआ जघन्य अंतर। उत्कृष्ट अंतर भी अंतर्मूर्ति कहेंगे, कैसे? पहले भव में उसने उत्कृष्ट आयु बांधी, घातायुष्क हुआ, फिर औदारिक मिश्र के लगातार भव किए, तो औदारिक मिश्र के लगातार भव कितने हो गए लक्ष्मी? आप कहो, 66,136 सारे औदारिक मिश्र ही है, सारे लब्धि अपर्याप्त औदारिक मिश्र वाले ही है, तो 66,336 हो जाएगी बहु उसके। ख्याल फिर भी अंतर्मूर्त कहेंगे औदारिक मिश्र, सारों का औदारिक मिश्र ही है। हाँ, यानी सभी सातों अपर्याप्त जो है लब्धि अपर्याप्त में लेना उसको, वो सारे औदारिक मिश्र वाले। नहीं नहीं, अकेले एक इंद्रिय की नहीं, 336। हाँ, 132 होते हैं। हाँ, और ये 336 होते हैं। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कैसे लेना? देखो यहाँ क्या लिखा, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त कों के समान है। निकालो, कथन वैसा ही होगा। बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त में देखो, आयु का उत्कृष्ट, आयुबंध का उत्कृष्ट अंतर, बादर बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त चाहिए ना। सभी अपर्याप्तों में ऐसा ही, वो पंचेंद्रिय अपर्याप्तों में बताया था। इसी प्रकार तस और स्थावर सब अपर्याप्तों की जानना चाहिए। पेज नंबर 61। देखो तीरियन चौंकी मार्गना है ना, पहले पैराग्राफ नीचे से 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन, आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर, एक समय कम अंतर्मूर्त, एक समय कम अंतर्मूर्त है, एक समय कम एक भाव लेना, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त। तो उत्कृष्ट अंतर हमने कौन सा दिया था, क्योंकि वो पंचेंद्रिय तीरियन अपर्याप्त था। पंचेंद्रिय तीरंच अपर्याप्तों में असंगी तीरंच अपर्याप्त के 8 भाव और संगी के अपर्याप्त के 8 भाव मिलकर 16 भाव लिए थे। इन्हें पहले भाव में पूर्व कोटि बांधी, फिर घातायुष का किया, संगी के 8। पंचेंद्रिय तीरंच अपर्याप्त मार्गना थी, वहां तो 16 ही भाव लेना था। इन्हें पहले भाव में उत्कृष्ट आयु बांधी उत्कृष्ट आबाधा के साथ, फिर घातायुष का हुआ, फिर उसी पर्याय में उत्पन्न होता रहा, तो 16 भाव हो जाएंगे। तो 16वें भाव में फिर उसके उत्कृष्ट आयु बांधी, तो उत्कृष्ट का अंतर वहां 16 भाव किए थे। पंचेंद्रिय तीरंच अपर्याप्तता, ये जो कथन है ना, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, ये सब जगह लागू होता है। और जघन्य अंतर, एक समय कम एक भाव, औदारिक मिश्र के लिए भी यही लागू होगा। परंतु औदारिक मिश्र के भाव कितने हो गए, 66,336वें भाव में फिर उसने उत्कृष्ट बांधी, वो अंतर भी उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहलाएगा। जघन्य, एक समय कम एक भाव, देखो वहां आया था ना, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त के समान इतना ही बताया है, यानी जघन्य अंतर, एक समय कम एक भाव। यहाँ पर भी घातायुष का करना ही है, एक ही बार, पहली बार, पहले भाव में उत्कृष्ट आयु बांधी, घातायुष का किया, तो दूसरे भाव में फिर अपर्याप्तों की आयु बांधता रहा। हाँ, अगर वो उत्कृष्ट बांधता तो उसका अंतर कम घटित होता, हमको अंतर मैक्सिमम लेना है। बीच में उसने उत्कृष्ट आयु नहीं बांधी, लगातार अपर्याप्त की आयु बांधता रहा। एक पहली बार, हाँ, पहले भाव में घातायुष को किया, यानी पहले भाव में उत्कृष्ट आयु बांधी, वन थर्ड बाकी था तभी, और फिर घातायुष को हुआ, और लगातार लब्धि अपर्याप्तों में उत्पन्न होता रहा। यानी उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है, पर वो अंतर्मूर्त में उसके 66,336 भाव हो गए। एक एक भव, जगन एक समय कम एक भव, और उत्कृष्ट में तो इतना है। उत्कृष्ट में यहाँ का टू थर्ड और वहां का वन थर्ड माइनस करना पड़ेगा, यानी उसमें से एक भव माइनस करो इतना। अब ये तो हमें कल बात पढ़ी थी, फिर भी अभी पढ़ेंगे उसका विशेषार्थ। तथा आहारक मिश्र का योग में आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर काल नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट पहले समय में उत्कृष्ट कहलाता है, बाद में तो औदारिक मिश्र तो आहारक मिश्र तो पलट जाएगा। अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट के बाद दोबारा उसी मिश्र अवस्था में दोबारा आयु का बंध नहीं होगा। एक ही अंतर्मुहूर्त में, कौन से अंतर्मुहूर्त है वो आहारक मिश्र वाला, दोबारा आयु नहीं बंधेगी, इसलिए उस अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं होगा। विशेषार्थ, जिस जीव के प्रारंभ में सात कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थितिबंध होकर बीच में एक समय के लिए उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है, अब ये मनोयोगों की बात वो समझा रहे हैं, उसके मनोयोग और वाचो मनोयोग में कोई एक योग में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य अंतर एक समय उपलब्ध होता है, और ये जो यहाँ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो घटित नहीं होता है। वो कैसे नहीं घटित होता है मैं बताऊंगी आपको। हमने अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर कैसे देखा, पहले समय में अनुत्कृष्ट किया, बाद में उत्कृष्ट करता रहा, और योग पलटने के पहले पहले फिर उत्कृष्ट किया, सॉरी अनुत्कृष्ट किया, तो बीच में अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त हुआ, परंतु उत्कृष्ट का अंतर ऐसा अंतर्मूर्त घटित नहीं होता, क्योंकि एक बार उत्कृष्ट करने के लिए जितना अंतर्मूर्त अनुत्कृष्ट होना ही चाहिए उतना योग का काल नहीं है। यही एक्सप्लेनेशन है अनुत्कृष्ट के उत्कृष्ट अंतर का। परंतु यहाँ उन्होंने अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर कहाँ बताना चाहा, कि दसवें तक अनुत्कृष्ट, सॉरी अनुत्कृष्ट बंध हो रहा था, ग्यारहवें में गया बंध नहीं था, फिर दसवें में आया तो बंध होने लगा, तो यह अंतर्मूर्त का अंतर हुआ। क्या ये सच हो सकता है? नहीं, क्योंकि वहाँ ग्यारहवें गुणस्थान में भी योगों का पलटना होता है, ये बात बिल्कुल हो ही नहीं सकती। परंतु वो बात चुक गए, पर उत्कृष्ट का अंतर कहीं भी नहीं होता है, परंतु अनुत्कृष्ट का अंतर होता कहाँ होना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया मनोयोग शुरू हुआ, मान लेते मनोयोग का इतना काल है, पहले समय में अनुत्कृष्ट हुआ, बीच में उत्कृष्ट होता रहा, क्योंकि उत्कृष्ट एक समय के लिए भी हो सकता है, दस समय के लिए भी हो सकता है, छोटे अंतर्मूर्त के लिए भी हो सकता है। ये योग वाला जितना काल है, पहले समय में अनुत्कृष्ट हुआ, अंतिम समय में अनुत्कृष्ट हुआ, बीच में उत्कृष्ट रहा, वो अनुत्कृष्ट का अंतर कहलाएगा। यही उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हम यहाँ का पहले पढ़ेंगे फिर देखेंगे। यानी जघन्य अंतर तो बताया उन्होंने एक समय का था, और उत्कृष्ट अंतर के लिए, अनुत्कृष्ट के उत्कृष्ट अंतर के लिए वो बता रहे हैं, उपशम श्रेणी पर चढ़कर और पुनः उतरकर विवक्षित योग में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध करता है, उसके अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर्मूर्त प्रमाण उत्कृष्ट अंतर उपलब्ध होता है। ये पूरा वाक्य आप पेंसिल से काट दो। हाँ, उपशम श्रेणी से चढ़कर दो लाइन निकाल देना, क्योंकि यहाँ योगों का पलटना होगा। भले दसवें के बाद ग्यारहवें में गया है, वहां बंध ही नहीं है, परंतु उसमें कितने बार वो योगों का पलटना होगा, क्योंकि योग का काल अत्यंत छोटा है। अगर योग के काल से ग्यारहवें का काल छोटा होता तो ये बात घटित हो जाती, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अजघन्य के लिए भी यही रूल लागू होता, अजघन्य का बंध था, क्योंकि जघन्य बंध कहाँ होता है, जघन्य बंध कहाँ होगा, क्षपक दसवें में, तो उपशम दसवें में क्या होगा, अजघन्य होगा, तो उपशम अजघन्य था, ग्यारहवें में गया और वापस अजघन्य हुआ, तो वहां अंतर्मूर्त भी घटित होना चाहिए था। पर देखो पेज नंबर 74 निकालो, 74 74, नीचे से चौथी लाइन, पांचों मन योगी, पांचों वचन योगी जीवों में आठ कर्मों के जघन्य और अजघन्य सिद्ध काल नहीं है। अगर यही अनुत्कृष्ट का रूल अजघन्य के साथ लगाते तो वहां घटित करते, यानी ये जो विशेषार्थ में थोड़ा चुक गए हैं वो, इसलिए इसको निकाल दो। तो सही रीजनिंग क्या है, किसी पर्टिकुलर योग का जो अंतर्मूर्त है उसके दोनों ओर का एक एक समय में अनुत्कृष्ट किया और बीच में उत्कृष्ट किया, तो अनुत्कृष्ट का अंतर अंतर्मूर्त हो गया, ये उसका रीजनिंग है। अब हम आगे पढ़ेंगे, जहां काट दिया ना अपने लाइन वहां से आगे, इन योगों में से प्रत्येक का काल इतना अल्प है जिसमें इनमें दो बार उत्कृष्ट स्थितिबंध या दो बार उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट आयु कर्म का बंध संभव नहीं। आयु के लिए तो बात बराबर है क्योंकि दो बार आयु संभव ही नहीं है, इसलिए इनमें सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध के अंतर का तथा आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध के अंतर का निषेध किया। अब काय योग में जो हमने पढ़ लिया था ना, उसी का विशेषार्थ है ये। पर काय योग में आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतरकाल संभव नहीं है, यह तो स्पष्ट ही है। क्यों, काय योग में उत्कृष्ट कौन बंद करेगा, तो संगी पंचेंद्रिय कौन सा बंद करेगा, 33 सागर वाला, भले देवायु हो नरकायु हो, परंतु उसका काय योग तो अंतर्मूर्त में पलटेगा, और दोबारा 33 सागर बांधने के लिए वो तो देव में जाएगा, घातयुष्क करेगा, फिर लौटेगा, तब जघन्य में जघन्य 10,000 वर्ष और पूर्व कोटि हो जाता है, और यहाँ इसका काल तो अंतर्मूर्त है, पंचेंद्रियों के लिए अंतर्मूर्त काल है। इसलिए कहते क्योंकि जो पिछली बार काय योग में आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध कर चुका है, ये 33 सागर का, उसके दूसरी पर्याय में पुनः उत्कृष्ट स्थितिबंध करने तक बीच में अनेक बार योग परिवर्तन होकर मन वचन और काय तीनों योग हो लेते हैं। हाँ, औदारिक काय योग का उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष प्रमाण होने से सामान्य से काय योग में साधिक 22,000 वर्ष प्रमाण तथा औदारिक काय योग में साधिक 7,000 वर्ष प्रमाण आयु के अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का, उत्कृष्ट का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि एकेंद्रियों में जहाँ योग लगातार है, काय योग कहो या औदारिक काय योग, तो उनके लिए तो उत्कृष्ट कौन सी पूर्व कोटि की होगी, वो आयु इन जनरल के लिए वो अनुत्कृष्ट कहलाएगी। तो अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतरकाल अवश्य बन जाता है, शेष कथन सुगम है। आगे बढ़े, अभी ये समझ में आई बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब वेद मार्गणा की बात करेंगे, तो स्त्री वेदी और पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी जीवों में तो योग के कारण क्या वो स्थितिबंध कम करेगी, ऐसा कुछ है, उत्कृष्ट स्थितिबंध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। हाँ, तो सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, जैसे अन्यत्र सर्व जगह देखा हमने, एक बार उत्कृष्ट करने के बाद एक समय के अंतर से दोबारा उत्कृष्ट नहीं कर सकता, वो अनुत्कृष्ट लगातार अंतर्मूर्त तक करता है रहेगा, फिर जाके वो उत्कृष्ट कर सकता है, क्योंकि इतने संकलेश से फिर उसके परिणाम कम संकलेश हुए, फिर अंतर्मूर्त के बाद वो वहां तक फिर पहुंचेगा। कहां गया हूं, उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर अब वो अपनी अपनी जो काय स्थिति कहेंगे, श्रीवेदी के पहले भाव में उसने उत्कृष्ट बंद किया था, बीच में उत्कृष्ट बंद ही नहीं किया, अंतिम भाव में किया, तो तीनों वेदों में क्रम से यानी श्रीवेदी के लिए 100 पल्य पृथक्त्व, पुरुष वेदी के लिए 100 सागर पृथक्त्व और नपुसक वेदी के लिए असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, क्योंकि नपुसक वेद में तो एक इंद्रिय में चला गया और उत्कृष्ट बंद तो संगी पंचेंद्रिय करेंगे, परिवर्तनों में लगने वाले काल के बराबर अनंत काल है। अब अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर काल ओघ के समान है, कितना है प्रतिभा बेन? जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुख, जब वो उत्कृष्ट कर रहा है तब। तीनों ही वेदों में आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर एक समय कम, एक पूर्व कोटि और 10,000 वर्ष है। क्योंकि हमने देखे तीनों वेद वालों ने 33 सागर की आयु बांधी, वो अंतर पूर्व कोटि बाकी थी तब घातायुष्क किया और 10,000 वर्ष की आयु भोग कर वापस वो पूर्व कोटि में जन्म लिया और 2/3 बीतने पर फिर उत्कृष्ट आयु बांधी 33 सागर की। यानी वो उत्कृष्ट का पहला एक समय माइनस कर दो तो पूर्व कोटि में से एक समय कम करो और 10,000 वर्ष। तथा उत्कृष्ट अंतरकाल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है। तो उत्कृष्ट अंतर कैसे घटित करेंगे? स्त्री वेदी में आपको घटित कराना है। बोलो प्रतिभा, क्या कराना है? आयु बांधनी उत्कृष्ट, स्त्री वेदी ने उत्कृष्ट आयु बांधी, फिर क्या किया? अनुत्कृष्ट बांधता, फिर कहाँ गया मरकर? आयु का क्या हुआ? उत्कृष्ट अंतर घटित करना है। तैतीस सागर में भेजना कि नहीं भेजना, ये मेरा प्रश्न। स्त्री वेदी है तो उसने आयु बांधी तो 33 सागर नरकायु बांधी तो नपुसक वेद वाली बात है, देव की बांधी तो पुरुष वेदी की बात है। अब वो घातायुष्क तो होना पड़ेगा उसको, घातायुष्क होकर स्त्री वेदी में उत्पन्न हुआ है। अब नरक का घातायुष्क करेगा तो भी नपुसक वेदी हो जाएगा। उसका अर्थ क्या? स्त्री वेदी ने देवायु ही बांधी है और घातायुष्क होकर 10,000 वर्ष की देवी में जो कोई उत्पन्न हुआ। वेदी को बांधने के लिए क्या है? छठे गुण स्थान में जा सकता है ना स्त्री वेदी? वो स्त्री के आयु नहीं बांध रहा है, वो स्वयं स्त्री वेदी है, संयमी है, पूर्व कोटि वाला है। स्त्री वेद वाला तो 9वें गुणस्थान तक जा सकता है, तो 6ठे गुणस्थान में स्त्री वेदी के लिए देवायु ही बांधनी है। क्योंकि घटकर फिर वो देवी हो सकता है, नरकायु बांधेगी तो उसका वेद बदल जाएगा। उस समय उसने पुरुष वेद बांधा था, घातायुष्क हुआ है, घातायुष्क हुआ तो बाद में तो उसने वो तो बंद ही रहे थे ना, मुनि तो बंद ही रहा था। तो जब घातायुष्क किया तो वहां जन्मने के पहले उसने तो देवायु तो थी उसकी, 10,000 वर्ष की देवायु थी। तो स्त्री वेद को बांधते हुए वहां मरण के पूर्व में स्त्री वेद बांधा उसने, देवी में उत्पन्न हुआ। नहीं समझ, फिर से स्त्री वेदी में रखना है, पर स्त्री वेद के रहते हुए वो कुछ भी बांध सकता है कि नहीं बांध सकता? स्त्री वेदी के लिए उत्कृष्ट आयु बांधने का निषेध है क्या? अगर वो नहीं आघातायुष्क नहीं होता 33 सागर के तो वहां पुरुष वेदी होकर जन्म लेता, पर हमको उसको स्त्री वेद में ही रखना है। तो स्त्री वेद में रखना है तो उसने घातायुष्क किया, अगर नरकायु बांधता तो नपुसक वेदी हो जाता है घातायुष्क होने पर भी। स्त्री वेदी होगा वो 10,000 वर्ष की आयु के साथ।
उसने देव में जो पहले आयु मांगी,
हाँ,
इसका हम घाता इसको करने जा रहे
हैं,
हाँ, वो कौन से स्वर्ग में जाएगा? तो पहले दो स्वर्ग में ही जन्मेगा ना?
क्यों?
स्त्री वेदी,
स्त्री वेदी जीव यानी मुनिराज है,
हाँ।
भाव से स्त्री वेद है और उसने 33 सागर की देवायु बांधी है, और जब बांधी थी तब तो पुरुष वेदी बांधा था क्योंकि संयमी जीव तो पुरुष वेद का ही बंध करते, पर बाद में घातायुष्क हुए, घातायुष्क किया 10,000 वर्ष की देवायु बाकी रही, अब वो स्त्री वेद बांधकर उसमें उत्पन्न हुए, स्त्री में उत्पन्न हुए, देवी में उत्पन्न हुए। भुवनवासी व्यंतर की देवी में उत्पन्न हुए 10,000 वर्ष की आयु के साथ। यानी वो 33 सर्ग के नरक का भी नहीं बांधना। देवायु बांधी फिर घातायुष को, उत्कृष्ट के लिए, जघन्य के लिए तो एक भवी करना था। नहीं नहीं सॉरी, जघन्य के लिए, जघन्य के लिए का उत्कृष्ट के लिए भी करना है। देखो उसको स्टार्टिंग सेम, इसीलिए क्योंकि अगर उसको, अगर हम जग इन्हें घातायुष को नहीं करते हैं तो उसका वेद ही पलट जाएगा। 10,000 करने की जरूरत नहीं, जहां तक स्त्री उत्पन्न होती है, कहां तक होती है तो सौधर्म ईशान तक भी होती है, तो मैक्सिमम 55 पल्ले की भी कर, 55 पल्ले तक भी रख सकते, कुछ भी रख सकते, उसको एकदम 10,000 वर्ष की मिनिमम बनाने की जरूरत नहीं। देवी की आयु रखी बस इतना ही, आगे स्त्री वेदी में रहा मनुष्यनी तीर्यंचनी, और अंतिम भव में फिर उसने 33 सागर की देवायु बांधी। सौ पल्ले पृथक्त्व का ही तो सब प्रश्न है, बीच में कुछ हमने अनंत काल तो नहीं छोड़ा है। यानी स्त्री वेदी ने 33 सागर की देवायु बांधी थी, घातायुष को होकर 10,000 वर्ष की देवी हुआ। हाँ, फिर पूर्वकोटि फिर देवायु बांधी। हाँ, पूर्वकोटि में देवायु बांधी। अब उसको नरकायु बांधने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु क्योंकि अभी तो उसका देखो जघन्य के लिए नहीं कराना है। हाँ, अभी उत्कृष्ट के लिए उसने सारे भोग किए, यानी उत्कृष्ट के लिए भी घातायुष का होकर देवी में रहा, 55 पल्ले तक कुछ भी हुआ। और कौन सा? अरे 33 सागर के भी तो पुरुष वेदी होगा, घातायुष का बनकर उसको देवी में रखना है। जघन्य अंतर के लिए 10,000 वर्ष का घातायुष का बनाया था, पर हमें अभी उत्कृष्ट अंतर निकालना है, तो कुछ भी ले लो ना उसमें, तो हम 55 पल्ले की देवी तक वो गाता इश्क रहा ऐसा भी ले सकते हैं। देवी हुआ।
हाँ,
देवी को ही, इसीलिए उतना गाता इश्क करना है, सागर की नहीं कर सकते हैं। सागर हो जावे तो क्योंकि हाँ पुरुष वेद, क्योंकि 55 पल्ले तक ही स्त्री वेदी रह सकता है, और अंतिम स्त्री वेद के भव में, अंतिम भव में फिर उत्कृष्ट आयु बांधी। ने नरक देवायु इसलिए लिया, नरकायु अगर बांधता तो वेद पलट जाता, समझ में आई बात? ऐसे ही पुरुष वेद के लिए, वो भी नरकायु बांधता तो वेद पलट जाता। हाँ, अब अंतिम में जो वो उत्कृष्ट बांधेगा तो उसको नरकायु बांधनी चाहिए, अंत में पुरुष वेदी के लिए अंत में नरकायु बांधनी चाहिए। अगर 33 सागर का देवायु बांधता है अंत में तो पुरुष वेदी हो जाएगा, या फिर उसको घातायुष का करके फिर स्त्री वेद में उत्पन्न कराना चाहिए। समझ में आती है? पुरुष वेद का अंतिम भव में उत्कृष्ट आयु बांधी, हम नरक आयु बांध लेते हैं, फिर उसको नरक में भेज देते डायरेक्ट। क्योंकि अगर घातायुष का नहीं करता पुरुष वेदी जीव, 33 सागर की आयु बांधी है तो नेक्स्ट भव में आकर मोह जाएगा, फिर उसको आयु बांधने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए उसको घातायुष को बनाया, मिथ्या दृष्टि बनाया, 100 सागर पृथक्त्व तक उसको घुमाया, और फिर उसने उत्कृष्ट आयु बांधी। नहीं तो उसका वेद पलट जाएगा, उसके भी घातायुष का बनाकर ही दोबारा उसका उत्कृष्ट बंद हो सकता है। जघन्य कहो या उत्कृष्ट कहो, घातायुष को तो उसको होना ही है। ताल में आती बात, पहले वो में घातायुष को किया, फिर उत्कृष्ट, हाँ तो पुरुष वेदी रहा बस, उसने अनुत्कृष्ट बंद किया, कुछ भी किया उसने बीच में। अब नपुसक वेदी में देखते हैं, नपुसक वेदी कोई मनुष्य तीर्यंच है, अब उसने नरकायु बांधी, उसको तो नरकायु ही बांधना है। वो देवायु बांधता तो पुरुष वेदी होता है या स्त्री वेदी होता है, हाँ ये नपुसक वेदी ही रहा। उसको जघन्य करने के लिए घातायुष का बनाना है, उत्कृष्ट करने के लिए तो कुछ घातायुष का करने की जरूरत नहीं है। वो नरक में गया फिर और कहाँ कहाँ घूमा, नपुसक वेद में रहा, असंख्यात तुद्गल परावर्तन एक इंद्रिय में चला गया बाद में इस तरह। नपुसक वेदी ने नरकायु बांध कर फिर घातायुष किया, जघन्य के लिए घातायुष, उत्कृष्ट के लिए कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, फिर से पढ़ती चौथी लाइन। तीनों ही वेदों में आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतरकाल एक समय कम एक पूर्व कोटि और 10,000 वर्ष, ये तो समझ में है ना। तो 10,000 वर्ष तो घातायुष करके होगा, परंतु कौन सा देवायु बांधेगा कि नरकायु, तो हमने अभी देख लिया। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी के लिए देवायु बांधनी है, नपुसक वेदी के लिए नरकायु बांधनी तथा उत्कृष्ट अंतरकाल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है। उत्कृष्ट अंतरकाल के लिए हमने देखा था स्त्री वेदी ने भी उत्कृष्ट आयु बांधी, देव की बांधी, और घातायुष को होकर देवी हुआ, भले 55 पल्ले की देवी हुआ, फिर स्त्रीवेद में घूमता रहा और फिर अंतिम भव में फिर उत्कृष्ट आयु बांधी उसने। यानी वेद तो पलटने वाला ही है। सौ पल्ले पृथक, हाँ, और पुरुष वेदी के लिए 100 सागर पृथक, नपुसक वेदी के लिए तो हमने देख ही लिया था। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का, अनुत्कृष्ट स्थितिबंध ने आयु बांधना है बस इतना है। तो पहले भव में उसने कोई आयु बांध कर रुक गया, पहले समय में उत्कृष्ट था, बाद में आयु बांध कर रुकी तो अनुत्कृष्ट का अंतर चालू हो गया, यानी वो अंतर्मूर्त कम अवंथर पूर्व कोटि। फिर अभी स्त्री वेदी के लिए एक बड़ा भव किया, बड़ा भव कितना करेगा, 55 पल्ले का, 55 पल्ले के अंतिम अंतर्मूर्त में आयु बांधी तो कितना होगा। देखो अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त तो दो अपकर्ष के बीच में होता है, उत्कृष्ट अंतर स्त्री वेद में साधिक 55 पल्ले, समझ में है ना। साधिक में यहाँ वंथर पूर्व कोटि लेना, यानी दोनों और एक एक अंतर्मूर्त कम कर दो, तथा शेष दो वेदों में साधिक 33 सागर है। यानी पुरुष वेद ने देवायु बांधी, यहाँ बंधर पूर्व कोटी वहां 33 सागर के लास्ट में बांधी तो साधिक 33 सागर, और नर नपुसक वेद के लिए नपुसक वेदी तीर्यंच मनुष्य ने नरकायु बांधी, तो यहाँ बंधर पूर्व कोटी वहां 33 सागर के लास्ट में जाके बांधी तो साधिक 33 सागर हो जाता है। अपगत वेद में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर नहीं है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। तो लक्ष्मी जी आप बताओ, अपगत वेद में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर क्यों नहीं है। फिर से प्रश्न यह है, अपगत वेदी में 7 कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध है, उसका अंतर नहीं है, कहा क्यों कहा ऐसा, क्यों नहीं होता। पहले ये नक्की करो अपगत वेदी में उत्कृष्ट सिद्धि बंध कहाँ हुआ। पहले समय उत्कृष्ट होगा, उतरते समय में अंतिम समय में उससे डबल होगा। उतरते समय में अंतिम स्थिति बंध है वो, भले वो अंतर्मूर्त का है। अभी उसके बाद अपगत वेद से सवेदी हो जाएगा, अपगत वेद के रहते हुए फिर दोबारा उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? उतरते हुए अंतिम अंतिम अंतर्मूर्त है, उतरने का अंतिम अंतर्मूर्त है। हाँ, अंतर्मूर्त वो आप ऊपर का देख रहे, जघन्य देख रहे। उत्कृष्ट कब होगा अपगत वेदी में? जब सवेद भाग से अपगत हुआ, चढ़ते समय अपगत हुआ, अपगत रहा थ्रू आउट, फिर उतरते समय नवे में आया। अभी वेद का भी उपशमी है, अभी उसका उदय शुरू नहीं हुआ है, तब जाके उसका उत्कृष्ट होगा। इसलिए उसका अंतर नहीं है, बताए ना। माया का उदय होगा, मान का होगा, क्रोध का होगा, फिर वेद का होगा। उसके पहले अंतर्मूर्त, उतरते हुए अंत में अंतर्मूर्त तक है, इसलिए उत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा। अनुत्कृष्ट का अंतर होगा कि नहीं होगा? कब होगा? हाँ, अंतर कब हुआ? चढ़ेगा फिर अंतर के, कब हुआ उसने? अपगत वेदी में अनुत्कृष्ट का अंतर चाहिए, उत्कृष्ट का अंतर नहीं है बताया। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ग्यारहवें में स्थिति बंध ही नहीं था, ये लेना है। अपगत वेदी थ्रू आउट रहा, अपगत वेदी हुआ, ग्यारहवें में जाकर फिर नीचे आया, फिर सवेदी होने के पूर्व तक अपगत वेदी रहा, तो दसवें के अंत तक उसने जो बंद किया तो अनुत्कृष्ट ही था, क्योंकि उत्कृष्ट तो जब उसके लिए कब, अपगत वेदी के उत्कृष्ट कब है? उतरते हुए लास्ट में, बाकी सब उसके लिए अनुत्कृष्ट ही था। अनुत्कृष्ट था दसवें तक, फिर ग्यारहवें में बंद ही नहीं था, फिर उतरते समय जो हुआ वो भी अनुत्कृष्ट ही था। तो अनुत्कृष्ट का अंतर कितना रहा? अंतर में एक समय रहेगा क्या नहीं रहेगा? एक समय होगा क्या नहीं होगा अंतर, ये मेरा प्रश्न है। मरण हुआ तो वो तो सवेदी हो जाएगा, अपगत वेद के रहते हुए अंतर होना चाहिए। एक अपेक्षा रहते तो दूसरी छूटती है। एक समय में मर सकता है, मरेगा तो सवेदी हो जाएगा। वो सवेद अवस्था वाला पुरुष वेदी होकर वो बंद करेगा, उसकी बात नहीं। अपगत वेदी रहते हुए बंद है, उसका पूरा ग्यारहवें का काल उतना ही, पूरा का पूरा उतना ही होगा, उसमें हीनाधिक नहीं होगा। उसमें जघन्य उत्कृष्ट उसी को कहे दो जो ग्यारहवें का काल है, यही लिखा है। देखो यहाँ पर अनुत्कृष्ट स्थिति बंद कहा, जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, ये नहीं पूरा ग्यारहवां गुण स्थान। उसमें वो मरेगा तो सवेद वाला हो जाएगा, अपगत वेदी रहते हुए उसको बंद नहीं होगा फिर। अब विशेषार्थ, तीनों वेदों की उत्कृष्ट काय स्थिति, सौ पल्ल्य पृथक्त्व यानी क्रमशः सौ सागर पृथक्त्व और अनंत काल है, इसी से यह सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम उक्त प्रमाण कहा है। वो अपनी अपनी जिसको काय स्थिति कहते हैं, आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतरकाल ओघ प्ररूपणा में जिस प्रकार घटित करके बतला आए हैं, उस प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नपुसक वेद की अपेक्षा उत्कृष्ट नरकायु का और स्त्रीवेद तथा पुरुष वेद की अपेक्षा उत्कृष्ट देवायु का बंद करा के यह अंतरकाल लाना चाहिए। मुझे अभी याद नहीं था, नहीं से विचार आया और घटित हुआ, लास्ट टाइम तो पढ़ा होगा। स्त्रीवेदी जीव की उत्कृष्ट भव स्थिति 55 पल्ल प्रमाणे, भव यानी एक भव, और पुरुषवेदी व नपुसक वेदी की उत्कृष्ट भव स्थिति 33 सागर प्रमाण होने से आयु कर्म के अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतर स्त्री वेद में साधिक 55 पल्ल, यानी वो 55 और पहले का 1/3 पूर्व कोटि, और पुरुष वेद और नपुसक वेद में साधिक 33 सागर, उसमें भी वो 1/3 पूर्व कोटि अंतर्मूर्त कम करना तो उतना साधिक में आ गया। अपगत वेद में 7 कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध उपशम श्रेणी से उतरते समय होता है, उतरते समय अंत में होता है, अंत में लिखो ने अंतिम अंतर्मूर्त में। तथा इसके बाद वह सवेदी हो जाता है, इससे अपगत वेद में उत्कृष्ट स्थितिबंध के अंतरकाल का निषेध किया है। उसका अंतर नहीं होता, उत्कृष्ट स्थितिबंध है, उसके बाद वह सवेदी हो गया। तथा मरण के बिना उपशांत मोह का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कहा है। उसमें कोई छोटा अंतर्मूर्त बड़ा अंतर्मूर्त ऐसे नहीं, सबके लिए 11वें का काल समान है। शेष कथन सुगम है। ये समझ में आई बात, जरा वेद में विस्तार से चर्चा है। मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, भव्य अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवों में 8 कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल मूल ओघ के समान है। मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञान में देख लेते हैं, प्रतिभाता ही हम बताओ 7 कर्मों का पहले बता लो। 7 उत्कृष्ट का जघन्य अंतर कितना होता है? कहीं पर भी अंतर्मूर्त होता है, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात उद्गल परावर्तन, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय करेगा ना, एक इंद्रिय में चला गया। मत्य ज्ञानी तो मत्य ज्ञानी रहा ना, असंयत के लिए भी ऐसा ही लागू होगा, क्योंकि उसमें भी पहला गुणस्थान आ ही गया है। भव्य अभव्य में भी लागू होता है, भव्य अभी समय दृष्टि नहीं हुआ है तो उसका भी असंख्यात पुद्गल परावर्तन होगा, मिथ्या दृष्टि में तो होता ही होता है। अब आयु में कैसे लगाएंगे? मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, इनमें आयु का बंध तो कौन सा होगा? नरकायु का, क्योंकि 33 सागर का देवायु का बंध करने वाले तो संयमी समय दृष्टि है, उसकी बात नहीं घटित होगी। तो उसमें भी बाद में वो एक इंद्रिय में चला गया तो उत्कृष्ट आयु बांधी नहीं, इस तरह से अनंत काल ले सकते उसमें भी। इसलिए मूल लोक के समान बताया। विभंग ज्ञानी जीवों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। हाँ, क्योंकि नारकी में ही लेना है ना, क्योंकि 33 सागर वाला विभंग ज्ञानी नारकी ही है, तो शुरुआत में पर्याप्त होने पर एक बार उसने उत्कृष्ट बंद किया, लास्ट में जाके एक बार किया। अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर का लोक के समय ने, यानी अनुत्कृष्ट का तो एक समय से अंतर्मूर्तक होता है, क्योंकि जब तक वो उत्कृष्ट कर रहा है वो अनुत्कृष्ट का अंतर कहलाएगा। तथा आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर सामान्य नारकियों के समान है। सामान्य नारकियों के समान का अर्थ क्या होगा? देखो देखो, विभंग ज्ञान में उत्कृष्ट आयु कौन बांध सकता है? मनुष्य तिरंज बांधेंगे कौन? उसका अंतर ही नहीं होगा उसका। मनुष्य तिरंजों के लिए विभंग ज्ञान एक अंतर्मूल तक लेता है। परंतु मार्गणा सम कंप्लीट हो गई, मार्गणा कंप्लीट हो गई उसका। विभंग ज्ञान फिर रहते हुए फिर दोबारा आयु नहीं बंधेगी। परंतु यहाँ लिखा देखो, यानी ये विभंग ज्ञान में आयु का बंध उसमें नारकियों में घटित किया। पहले भी ये प्रश्न हुआ था अपना, विभंग ज्ञान के बारे में हमने कुछ प्रश्न लिखा था, वहां क्यों नहीं दिया करके। यानी वो काल के उसमें लिया था कि विभंग ज्ञान में आयु का बंध एक समय क्यों नहीं लिया, विभंग ज्ञान के रहते हुए आयु बंध चालू हो गया और फिर रुक गया, इस तरह से क्यों नहीं लिया, ऐसे हमने वहां प्रश्न लिखा था मनुष्य तिरंजों के लिए। यानी मनुष्य तिरंजों के लिए विभंग ज्ञान में क्या आयु का बंध नहीं होता? क्या कहना क्या चाहते हैं? होना तो चाहिए, क्योंकि देवायु तो बन सकती है ना विभंग ज्ञान में। हमने देखे थे ना विभंग ज्ञान में कौन कौन सी आयु बन सकती है, उसकी बात की थी हमने। देखो देखो, हमने वन थर्ड पूर्व कोटि, देखो आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर सामान्य नारकियों के समान है। सामान्य नारकियों में कितना होता है? उत्कृष्ट का तो अंतर नहीं होगा, अनुत्कृष्ट का कुछ कम 6 महीना होगा। ये हमने कुछ कम वन थर्ड पूर्व कोटि किसके लिए लिखा है? नहीं, ये घटित नहीं होगा वन थर्ड पूर्व कोटि, क्योंकि उनका विभंग, वो तब तक हमको ये पता नहीं था विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त रहता है, बाद में हमने डिराइव किया था। यानी विभंग ज्ञान उन्होंने देवनारकी में ही लिया है, यानी उत्कृष्ट का अंतर नहीं है। अनुत्कृष्ट का कुछ कम 6 महीने। देखो ये मनुष्य तिरंजों में भी घटित होगा, उत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतर नहीं तो कहीं पर भी नहीं होता है ना, क्योंकि विभंग ज्ञान एक भाव में ही रहेगा, अन्य भाव में तो नहीं रहता। इसलिए वंतर जब बाकी है आयु, तब उसने जो बांधा वही उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा। अनुत्कृष्ट का अंतर कब होता है? 2 अपकर्ष के बीच में होगा। तो विभंग ज्ञान में रहते हुए मनुष्य तिरंजों के 2 बार आयु का बंध नहीं होगा, तो कहाँ होगा? देवनारकी में हो सकता है। मनुष्य तिरंजों के लिए विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त तक ही टिकता है, लगातार नहीं रहता है, वो बारंबार हो सकता है पर लगातार अंतर्मूर्त से ज्यादा विभंग ज्ञान नहीं रहता है। तो देवनाथ मनुष्य तिरंजों में तो विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त तक रहता है। और हमने काल में जो देखा था ना आयुबंध का काल, विभंग ज्ञान में आयुबंध का काल, बावन पेज पर हमने प्रश्न निकाला था, वो 52 पेज पर। विभंग ज्ञान में हमने देखा था आयु का काल ओक के समान बताया था। मैंने आयु का काल यानी उत्कृष्ट का एक समय तक ही होता है ना बंद, और अनुत्कृष्ट का तो लगातार अंतर्मुख तक होगा, ये ओक के समान काल बताया था। तो वहां हमारा प्रश्न था कि अनुत्कृष्ट का एक समय क्यों नहीं हुआ था। जैसे योग में होता है ना, लास्ट में उसके योग पलटने के पहले पहले उसने आयु का बंध शुरू किया, तो वहां एक समय घटित हुआ था, ये हमारा प्रश्न था तभी। अब यहाँ तो अंतर की बात तो सहज रूप से घटित हो ही जाती है। हाँ, अभी आगे बढ़ेंगे। यानी यह जो लिखा है सामान्य नारकियों के समान क्यों लिखा, ये देवों के लिए भी यही बात होगी, परंतु किसी एक के समान बताना है तो नारकियों के समान है, क्योंकि सबके लिए तो वही 6 महीने पहले बंद हुआ और लास्ट में 8वीं बार बंद हुआ, तो बीच में कुछ कम 6 महीने चला गए, ये उसका उत्कृष्ट अंतर होगा, क्योंकि विभंग ज्ञान कंटिन्यूअस देव और नारकियों में ही हो सकता है। तो सामान्य नारकियों के समान यानी जहां देवों में घटित होता है वहां पर भी यही बात लागू होती है। अब आभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर नहीं है। मयंक भाई, वो उत्कृष्ट स्थितिबंध किसके होता है, जब आप अगर सोचेंगे तो इसका आपको उत्तर मिलेगा क्यों नहीं होता, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिबंध के लिए कंडीशन क्या है, उत्कृष्ट संकलेश होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टियों के संकलेश कब होगा, हाँ चौथे में है अभी, मिथ्यात्व के सन्मुख है और अंतिम स्थितिबंध कर रहे हैं, अंतिम उत्कृष्ट स्थितिबंध कर रहे हैं, ऐसा लेना वहां पर तो उसका अंतर नहीं है, क्योंकि उसमें तो सम्यक को ही छूट जाएगा, अभी उसका अंतर कैसे होगा, सम्य दृष्टि रहते हुए नहीं अंतर घटित होगा। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर ओघ के समान है। अनुत्कृष्ट का एक समय से अंतर्मुख जो है वो कहाँ घटित होगा, अरे उत्कृष्ट अंतिम समय में हुआ, हाँ तो अनुत्कृष्ट का अंतर कैसे होगा, अनुत्कृष्ट का एक समय अंतर कैसे होगा, छठे सातवें में थ्रू आउट अनुत्कृष्ट ही रहा, सन्मुख में तो उत्कृष्ट हुआ, तो फिर उत्कृष्ट होने के बाद फिर अनुत्कृष्ट के लिए चांस कहाँ है, कब, अरे 11वें में नहीं होता तब लेना है, वो पहले वो क्या है, सारा अनुत्कृष्ट है ना, जो उत्कृष्ट ने वो सारा अनुत्कृष्ट है, तो 11वें में गया, 10वें में चढ़ते समय अनुत्कृष्ट ही था, जघन्य की ओर था, उसके हमें लेना नहीं, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात हो रही है, तो 10वें में अनुत्कृष्ट बंद कर रहा था, 11वें में गया तो बंद ही नहीं था, एक समय में मारा देव बहे गया तो अनुत्कृष्ट ही बंद हो रहा है, वह चौथे में गया ना, चौथे में गया है वो, तो उसका उत्कृष्ट तो वह नहीं है, तो अनुत्कृष्ट ही था तो एक समय, और पूरे 11वें में रहा और बाद में 10वें में आया तो अंतर्मुख, यानी वो हमेशा ओघ में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का अंतर कैसे घटित करते हैं, एक समय और अंतर्मुख, वो बीच में उत्कृष्ट हुआ इसलिए, और यहाँ सम्यक दृष्टि में उत्कृष्ट कब होता है, मिथ्यात्व के सन्मुख, तो अनुत्कृष्ट का अंतर कब होगा, तो कहते 11वें में होगा, एक समय के लिए 11वें में रहा तो एक समय का अंतर, अंतर्मूर्तक रहा तो अंतर्मूर्तक अंतर। यानी ओक के समान क्या है, कथन ओक के समान है। कौन सा? देखो फिर से अभिनिबोधि ज्ञानी की बात हमने पढ़ी, मिले कि आपको ऊपर से छठी लाइन 107 नंबर का पैराग्राफ, अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी जीवों में उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिबंध चौथे से पहले में जाने वाले के होता है। एक अंतर्मूर्त, एक बार उत्कृष्ट हुआ तो उसके मार्गना ही खत्म हो गई, पहले में पहुंच गया, उत्कृष्ट का अंतर नहीं। अब कहते अनुत्कृष्ट का अंतर ओग के समान है, ओग में तो था कथन एक समय से अंतर्मूर्त, पर ओग में इसलिए कहा था को बीच में उत्कृष्ट हो रहा था। अब यहाँ कैसे समझना, तो यहाँ ग्यारहवें गुणस्थान में बंध ही नहीं है, स्थिति बंध ही नहीं है, उस अपेक्षा से अनुत्कृष्ट का एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक कथन ये घटित हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि मार्गणा वही की वही रही, समय दृष्टि का समय दृष्टि रहा, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध कर रहा था, स्थिति बंध ही रुक गया, फिर जो किया वो अनुत्कृष्ट ही हुआ, इसलिए ओक के समान कहा। अब समय दृष्टियों में आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर साधिक पल्य प्रमाण है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर है। अभी उसको घटित करो, बोलो प्रतिभाताई बोलो। समय दृष्टि है, आयु कर्म का उत्कृष्ट बंध कौन सा करेगा? हाँ, समय दृष्टि भूख भूमिका नहीं बांधता। अरे उत्कृष्ट बंध ही 33 सागर का है, तो समय देखो देखो वो घाताविष को होकर समय दृष्टि घाताविष को किया, समय दृष्टि ने ऐसा लेना है। मिथ्या दृष्टि होकर घाताविष को करता है तो 10,000 वर्ष का हो सकता है, तो जघन्य अंतर हमने 10,000 वर्ष और पूर्व कोटि लिया था। अब यहाँ कैसा लेना है, समय दृष्टि है, पूर्व कोटि वाला मनुष्य है, वो अंतर पूर्व कोटि है, यानी वो संयमी है, छठे गुणस्थान में 33 सागर की देवायु बांधी। अब उसको दोबारा 33 सागर की देवायु बांधनी है, अरे 33 सागर की देवायु पूरे भोगेगा तो मोक्ष चला जाएगा, फिर दोबारा बंध ही नहीं होगा देवायु का, फिर उसको घाता इश्क करना है, समय दृष्टि घाता इश्क है, तो सौदर संयम छूट जाएगा, संयम छूट जाएगा तभी तो घाता इश्क होगा उसका। ढाई सागर क्यों, वो तो ढाई सागर तो उसका अंतर बढ़ेगा, मिनिमम अंतर करना है, मिनिमम अंतर में फिर 33 सागर की बांधनी है, देव में ही जाना चाहिए और सम्यक को चालू रखना चाहिए, तो साधिक पल्य हो जाएगा। हाँ, मनुष्य में लाना ही है उसको, क्योंकि फिर उसको 33 सागर की आयु बांधनी है। देखो यहाँ क्या कहा, कहाँ गया मेरा, देखो आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर साधिक पल्य प्रमाण है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर है, क्योंकि यहाँ क्या लेना है, समय दृष्टि तो रखना, उसको मिथ्या तो में नहीं भेजना, फिर भी उसने घाता विष का इतना किया तो साधिक पल्य प्रमाण उसने आयु रखी, यानी सौधर्म ईशान की जघन्य आयु समय दृष्टि की, तो पल्य से थोड़ी ज्यादा रखनी है, साधिक पल्य, वो वंथर पूर्व कोटि और टूथर पूर्व कोटि मिलकर भी साधिक में ही चला जाएगा, समझ में ही ना बात। फिर उसने उस भव में दूसरे भव में 33 सागर की देवायु बांधी, तो ये जघन्य अंतर साधिक पल्य हुआ, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर है, यानी पहले भव में 33 सागर बांधे, फिर उसने वो पल्य प्रमाण की, और फिर वो 66 सागर तक देव मनुष्य की आयु बांधता रहा, और अंतिम समय तो रहा उसमें, तो अंतिम बांधने दो ना, 33 सागर की नहीं बांधी, पूरे इसने उत्कृष्ट आबादा के साथ नहीं बांधी, वो अनुत्कृष्ट में चली जाएगी, उत्कृष्ट नहीं बांधी। अब ये उसने 66 सागर में अंतिम भवन था ना, उसने 66 वेदक सम्यक्त का अंतिम भवन 66 सागर वाला, तो उस समय उसने 33 सागर की देवायु फिर बांधी हाँ, और फिर उसने जाने दो ना उसको 33 सागर तक, उसको वेदक सम्यक्त में नहीं रखना ऊपर, क्योंकि 33 सागर की आयु बांधी वेदक सम्यक्त में, क्षायिक हो गया, क्षायिक होके वहां चला गया। आयु तो बांध सकता है ना वेदक में, वेदक सम्यक्त में 33 सागर की आयु तो बांध सकता है, बाद में क्षायिक होगा क्योंकि उसका वेदक यानी जिसको वेदक सम्यक्त का काल पूरा होने को आया 66 सागर का, उसने देवायु बांधी और क्षायिक होगा और क्षायिक में वो चला गया ऊपर, तो 66 सागर हो गया, कुछ कम 66 सागर। अब अनुत्कृष्ट सिद्धिबंध का अंतर ओक के समान है, दो अपकर्ष के बीच वाला अंतर मूर्त होगा, अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर आप बता सकेंगे? आयु आयु बांधी इतना ही लेना है, अभी देवायु बांधी ऐसा नहीं, कोई ना कोई आयु बांधी जिसको हम अनुत्कृष्ट स्थितिबंध करेंगे, यानी उसने कोई वंथर पूर्व कोटि पहले आयु बांधी, कुछ भी बांधी देवायु की, समय दृष्टि है ना, और उसने अनुत्कृष्ट आयु बांधना है तो उसने आयु बांधी और आयु बांध कर मिनिमम अंत हाँ आयु बांध कर उसने फिर देव में गया और देव में उसने आयु के अंत में फिर आयु बांधी। अनुत्कृष्ट का जघन्य दो अपकर्ष के बीच में होता है, उत्कृष्ट अंतर लेना है। उत्कृष्ट अंतर कैसे लेना? नहीं देखो देखो, वंथर पूर्व कोटि बाकी था, वंथर पूर्व कोटि बाकी था तो पहले समय में उसने 33 सागर बांधी, दूसरे समय से अनुत्कृष्ट कहलाएगी, अंतर्मूर्त का आयु बांधी उसने, आयु बंद रुक गया यानी अनुत्कृष्ट का अंतर चालू हो गया। अभी मनुष्य आयु कितनी बाकी थी? वंथर पूर्व कोटि में अंतर्मूर्त कम, उतना काल यहां लेना, फिर 33 सागर के देव में गया और वो देव ने अंतिम अंतर्मूर्त में मनुष्य आयु बांधी, कितने बांधी हमें उससे मतलब नहीं है, अनुत्कृष्ट के अनुत्कृष्ट रहे तो वो 33 सागर और यहाँ वंथर दोनों ओर अंतर्मूर्त कम कर देना तो सादिक 33 सागर हो जाएगी, ख्याल में ये दोनों ओर हाँ, इसलिए वो ओक के समान कह दिया। इसी प्रकार अवधि दर्शनी और सम्यक दृष्टि जीवों में जानना चाहिए, जो हमने अभिनिबोधि ज्ञानी में देखा था वैसे वहां पर सम्यक दृष्टि इन जनरल बात की। मनपर्य ज्ञानी जीवों में, अब मनपर्य ज्ञानी कहने से एक ही भाव लेना पड़ेगा हा? सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि मनपर्य ज्ञानी को उत्कृष्ट स्थितिबंध कब होता है? वो चौथे के सन्मुख हो तो, मिथ्यात्व के नहीं, असंयम के सन्मुख हो तो, तभी तो उसका मनोपरि ज्ञान छूट जाएगा, मार्गना पलट जाएगी, वो फिर दोबारा प्राप्त करता है कि नहीं करता वो हमारा प्रश्न नहीं है, यहाँ पर वो मार्गना वहीं पर समाप्त हो जाती है तो उत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा। एक बात अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, ये 11वें गुणस्थान में होगा, क्योंकि जब वो असंयम के अभिमुख नहीं है ऐसा सारे ही मनपर्य ज्ञानी जो बांध रहे वो अनुत्कृष्ट ही बांध रहे, जब तक मनपर्य ज्ञान में तब तक अनुत्कृष्ट बंध कर रहे, तो उसका अंतर कैसे होगा? तो 11वें में होगा। तो 11वें में जाने वाला क्षायिक होगा कि क्षोभ्रम समय दृष्टि होगा? क्यों? द्वितीयोपशम और मनपर्य ज्ञान इकट्ठा है, स्वीकार? औपशमिक सम्यक और मनपर्य ज्ञान एक साथ नहीं है, तो मनपर्य ज्ञानी उपशम श्रेणी चढ़ जाने क्षायिक होना चाहिए, जाएगा या क्षायिक होकर उसका एक भाव भी हो सकता है ना, क्योंकि मनपरिज्ञानी तो देव में जा सकता है, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने में कोई हर्जा नहीं उसके, उस भाव में उसके मार्गणा का भाव वही एक भाव है, पर वो देव में जाता है कि नहीं जाता उसकी बात है, जा सकता है ना। अनुत्कृष्ट का बंदर रुक गया था, उसके लिए उस भाव में मोक्ष जाता है कि नहीं हमारा सवाल नहीं है। हाँ विपुलमति वाला तो नियम से मोक्ष जाता है, रुजमति वाला एक भाव और भी कर सकता है। यहाँ तो अनुत्कृष्ट का अंतर कहाँ लेना है, तो ग्यारहवें में लेना है। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतर नहीं है, यानी वो मन परे ज्ञानी वाले वो तो 33 सागर की आयु बांधेंगे, बांध सकते, पर उत्कृष्ट एक बार बांधी वो तो देव में जाएगा, तो मन परे ज्ञान कहाँ रहेगा, मार्गना बदल गई।
मन परे ज्ञानी के अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त जो बताया
ग्यारहवें गुणस्थान में,
ग्यारहवें में
इसकी आवाज बहुत आ रही है, 2 मिनट। ये समझ में आएगी अनुत्कृष्ट का अंतर। हाँ आयु कर्म के उत्कृष्ट का अंतर नहीं बता दिया, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि दो अपकर्ष के बीच में, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि का त्रिभाग प्रमाण है, मैंने पहली बार और आठवीं बार आयु बांधी। मैंने जघन्य अंतर के लिए सातवीं और आठवीं के बीच वाला अंतर लेना, इसी प्रकार संयत जीवों में जानना चाहिए, संयम में भी इसी प्रकार घटित होगा, परंतु संयम के लिए कौन सा स्वामित्व में डिफरेंस होगा। संयम में वो छठे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में जाने वाले को उत्कृष्ट होगा, और मन स्वामी में डिफरेंस है, अंतर में कोई डिफरेंस नहीं कहेंगे हम। मन परे ज्ञान रहते हुए आयु का बंध किया, कब किया, एक बार पूर्व कोटि का त्रिभाग बाकी था तब किया, और लास्ट में आठवें अपकर्ष में किया, बीच कुछ कम बंथर पूर्व कोटि, सातवें और आठवें के बीच में वाला होगा वो जघन्य अंतर होगा, वो अंतर्मूर्त का होगा। संयमी में भी ऐसा ही कथन होगा, पर संयमी का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्यात्व के सन्मुख वाले को लेना, बाकी कथन तो ऐसा ही होगा। अंतर में सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत और परिहार विशुद्धि संयतों में सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि उनका ही उत्कृष्ट कब है वो तो सब में बताया था हमने कि उससे वो तो प्रतिपात होता है तब उसका उत्कृष्ट है, तो उसकी वो मार्गणा नहीं रहेगी, फिर दोबारा उत्कृष्ट उस मार्गणा के रहते, जैसे समय दृष्टि में उत्कृष्ट का अंतर नहीं है, वैसे इसमें भी अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं है, क्योंकि इन मार्गणाओं में ग्यारहवां गुणस्थान नहीं है। संयतों में मनपरे ज्ञानियों में अनुत्कृष्ट का अंतर था अंतर्मूर्त वाला, परंतु सामायिक छदोपासना 9वें तक है, परिहार विशुद्धि वो 6वें-7वें में है, बीच में 11वां गुणस्थान नहीं है, इसलिए अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं है, उत्कृष्ट का तो होता ही नहीं है। ये दो लाइन और पढ़ लेते 67 पेज पर। आयु कर्म का भंग मनपरे ज्ञान के समान है, यानी उत्कृष्ट का अंतर नहीं है, अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। इसी प्रकार संयता संयतों के जानना चाहिए, उसमें भी संयता संयतों में भी सात कर्मों का उत्कृष्ट बंध मिथ्यात्व के सन्मुख वाले के होगा, उत्कृष्ट का अंतर नहीं है, अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि उसमें बीच में कोई 11वां गुणस्थान नहीं है। आयु के बारे में वैसा ही होगा। अब संयता संयत आयु कितनी बांधता है उसके अनुसार उसमें ले लेना, वो 5वें गुणस्थान की आयु तो 16वें स्वर्ग की बांध सकता है, उसके लिए वही उत्कृष्ट है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतों में 6 कर्मों के, अभी यहाँ 6 ही कर्म बनते हैं, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय में उत्कृष्ट बंध कब होगा? उपशम श्रेणी उतरते समय अंत में होगा, उत्कृष्ट का अंतर नहीं और अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं है। जब तक सूक्ष्म सांप्राय तब तक तो बंध है, उसमें ग्यारहवा गुणस्थान नहीं है। यही रुकेंगे अभी हम, विशेषार्थ कल पढ़ेंगे। चावाणी के क्या